भारत में नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं। आखिर इन 2 सालों में भारत ने प्रगति की ओर कितने कदम बढ़ाए हैं और उसके इस सफर में कठिनाई क्या रही, इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। सर, ये बहुत समीक्षा कठिन काम होता है। अगर मैं आपसे सीधे शब्दों में पूछूं कि 2 सालों को मोदी सरकार के, आप अगर 2 लाइनों में कहना पड़े तो क्या कह पाएंगे?
देखिए, 2 लाइनों में अगर कहना पड़ेगा तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 26 मई 2014 और 26 मई 2016 यानी एक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश, लेकिन जिसकी दुनिया में बहुत ज्यादा कद्र नहीं होती थी, एक ऐसा देश जो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी से चल रहा था लेकिन उसकी सरकार की कद्र उस तरह से नहीं थी, और 2 साल बाद वो 125 करोड़ लोगों की ताकत दुनिया देख रही है और यहाँ के प्रधानमंत्री को दुनिया मान रही है कि जो दुनिया के गिने चुने ताकतवर देश हैं, ताकतवर मतलब किसी को डराने वाली ताकत नहीं, लेकिन जो प्रभावशाली देश हैं उनमें से एक देश भारत भी है।
बिल्कुल सही। शायद हर्षवर्धन जी, आपकी बात से ज्यादातर लोग इत्तेफाक रखेंगे, मगर सरकार की जब हम बात करते हैं तो विदेश नीति और विदेशियों के सामने और उनसे संबंध एक एस्पेक्ट शायद उसके हैं। घर के मामले में अगर देखा जाए तो उसे कैसे देखेंगे?
देखिए, घर के मामले में चूंकि हिंदुस्तान की जो राजनीतिक विविधता है और जो यहाँ के लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, तो उसकी वजह से बहुत ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर हम बात करेंगे तो लगेगा कि मोदी सरकार बहुत सी जगहों पर चूक गई है, या फिर कहें कि उस मौके को जितने अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए था वो नहीं कर पाई है। और उसमें एक बड़ी वजह हम ये भी कह सकते हैं कि जो विपक्ष में माइनस कांग्रेस यानी जो मुख्य विपक्षी कह लें, उसके अलावा जो राजनीतिक दल हैं, उन विपक्षी पार्टियों को भरोसे में लेकर शायद वो घरेलू मोर्चे पर जितना करना था वो नहीं कर सकी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो भारत की लोकतंत्र की व्यवस्था है, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें उच्च सदन यानी राज्यसभा में बहुमत न होने के बावजूद इस सेशन में अभी जो हाल में सेशन बीता है उसमें जिस तरह से सरकार ने ढेर सारे कानूनों को पास कराया और अब धीरे धीरे कहें थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन जो रिफॉर्म शब्द जो बार बार कहा जा रहा था कि क्या रिफॉर्म एजेंडा वापस लौटेगा कि नहीं, या सरकार उस एजेंडे पर स्टिक करेगी नहीं, तो मुझे लगता है कि 2 सालों के बाद अब मोदी सरकार ये बताने की स्थिति में हुई है। जब हम साल भर के बाद ये समीक्षा कर रहे थे तो कुछ भी नहीं था, मतलब सिर्फ एक मोदी का ऑरा था, लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां दिखने लगी हैं और खासकर जो एक तरह से कहें कि देश की अर्थव्यवस्था के जो 4-5 बड़े कारक होते हैं, तो महंगाई लगभग काबू में है, कुछ एक महत्वपूर्ण खाने की चीजों में जैसे दाल की बात होती है तो वो यहाँ बड़ा इशू बना, वो एक मुद्दा अगर छोड़ दें तो महंगाई दर लगभग काबू में रही है। इकोनॉमी की ग्रोथ स्पीड की बात करें तो वो लगभग ठीक ठाक है, मतलब बहुत तेज नहीं कहेंगे तो, लेकिन अगर दुनिया की जो स्थिति है तो उसमें 7-7.5% की एक ग्रोथ अच्छी मानी जाएगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का काम ये सरकार कर पा रही है कि नहीं, तो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में रोड और रेलवेज में बहुत बड़े काम हो रहे हैं। खास करके इसलिए मैं बहुत बड़े कह रहा हूं कि पहली बार किसी रेलवे मिनिस्टर ने लगातार 2 बजट में ये साहस दिखाया। हिंदुस्तान में ट्रेनों का बड़ा प्रचलन होता है कि आप कुछ भी है तो रेल मंत्री मतलब वो ट्रेन चला देगा आपके यहाँ, भले ही पटरियां नहीं हो, भले ही उसके लिए सिग्नलिंग नहीं हो, भले ही सेफ्टी नहीं हो, भले ही क्लीनिंग नहीं हो, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बिना होते हुए भी ट्रेन बस चल जाती थी और भले ही ट्रेन 17 घंटे और 24 घंटे भी लेट होती थी। अब मैं नहीं जानता हूं कि दुनिया के किस हिस्से में इतनी देरी से कभी ट्रेन ही चलती होंगी, लेकिन एक रेल मंत्री मिला जिसने कहा कि नहीं, हम इसको एक एजेंडा लेते हैं, और उन्होंने तो ये भी कहा है कि 2020 तक हम सबको टिकट दे देंगे, यानी हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ी बात होगी कि अगर आप रेल का टिकट मिल जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी परेशानी है लोगों के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपके पास बड़ा साधन है। इसी तरह से सड़कों के मामले में जो पिछली एनडीए सरकार ने एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात की थी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात की थी, उससे थोड़ा ये आगे बढ़े हैं। और एक जो अच्छी चीज है कि सरकार ने एक और जो थोड़ा सा छूटा हुआ फ्रंट था, जो बार बार हम कहते हैं कि चाइना की पॉलिसी कॉपी की थी भारत ने एसीजेड की, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि चीन ने अपने बंदरगाहों को बहुत दुरुस्त किया, पोर्ट पॉलिसी जो थी वो बहुत शानदार है और वो पोर्ट इसी का काम करते थे कि दुनिया के साथ उनके कार्गो को जोड़ने का एक जरिया बनते थे, उस पर भी बहुत ज्यादा काम इस सरकार ने किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो मोटे मोटे चार पांच कारक हैं वो पॉजिटिव दिख रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि इतना ज्यादा एक क्या कहेंगे कि लैंडस्लाइड विक्ट्री इतनी बड़ी विजय के साथ, और जो सबसे बड़ी बात है कि जो नरेंद्र मोदी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है कि वो सब कुछ एकदम लार्ज स्केल पे करते हैं, और उस लार्ज स्केल की वजह से जो देश की उम्मीदें हैं वो बहुत ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि दो साल बाद अगर हम समीक्षा कर रहे हैं तो जो घरेलू मोर्चे पे एक जो मोटे मोटे चार पांच बड़े कारक होते हैं वो बेहतर स्थिति में है।
हर्षवर्धन जी, जो आप कह रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि मोदी ने पिछले दो साल में जो बड़ा काम करना है या वो जो ग्रामीण लोग हैं जिसकी बात अक्सर की जाती है कि उसको जोड़ना है देश से और उसकी इकोनॉमी से, उसको करने का ग्राउंड वर्क किया है शायद, तो अभी शायद रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, उस रिजल्ट के लिए क्या हमें इंतजार करना पड़ेगा अभी?
देखिए, मुझे लगता है कि रिजल्ट जो शब्द है उसके लिए तो इंतजार करना भी चाहिए क्योंकि पांच साल की सरकार है, और इंतजार इसलिए भी करना होगा कि जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, आपने ग्रामीण भारत को देश के मुख्य हिस्से से जोड़ने का सवाल पूछा, अब ये बहुत बड़ा सवाल है। हिंदुस्तान में ये कभी सोचा ही नहीं गया था कि किसान की आमदनी दोगुनी की जाए। बार बार हम कहते थे कि इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी, हम जीडीपी के आंकड़े की बात करते थे, हम आईआईपी की बात करते थे, लेकिन कभी ये बात नहीं हुई कि किसान भी जो उपज तैयार करता है, जो फसल लगाता है, उसकी कीमत उसे कैसे ज्यादा मिले। हालांकि इस मोर्चे पर सरकार ने बड़ा काम किया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सरकार शायद अभी बहुत पीछे है, यानी जो दोगुनी कमाई करने का जो एक लक्ष्य है उसमें बहुत पीछे इस लिहाज से है कि अभी भी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का कॉन्सेप्ट ले आए, पूरे देश को एक बाजार देने की बात है, लेकिन उस बाजार के काम करने के कुछ जो सफल प्रयोग दिखने चाहिए थे वो अभी दिखने में टाइम लगेगा, और मुझे लगता है कि वो रिजल्ट आते आते 2019 में सही तो 2018 तक तो अभी दो साल कम से कम लगेंगे, और शायद तब हो पाएगा कि हम इस सरकार के कामों की समीक्षा करेंगे कि जो जो चीजें इन्होंने की क्या उसका असर दिखा, या फिर वो ज्यादातर सिर्फ पैकेजिंग और ब्रांडिंग और मार्केटिंग का ही जरिया भर बन के रहेगी। क्योंकि अगर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट सफल होता है तो पहली बार ये होगा कि हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में, जहां सबसे बड़ी मुश्किल है कि ज्योग्राफिकल डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा है, अगर आप देश के किसी एक हिस्से में है तो दूसरे हिस्से के लिए आप बिल्कुल कटे हुए से हो जाते हैं, इतने सालों बाद भी, 70 सालों के बाद भी आजादी के वो स्थिति बनती है। तो क्या कोयम्बटूर का किसान करनाल में अपनी सब्जी बेच सकेगा अगर उसको जरूरत है, या अगर कहीं से गुंटूर के चिली मार्केट से आनी है तो उसको जरूरत हो तो वो दिल्ली बेच सकेगा वहीं बैठे बैठे, या पंजाब में अगर ज्यादा गेहूं हो गया है और उसको मुंबई का बाजार चाहिए तो मिल सकेगा, अगर ये मोदी सरकार कर पाती है, क्योंकि तो उसमें फेडरल स्ट्रक्चर की मुश्किलें हैं, राज्यों दो राज्यों के बीच जो एक कहते हैं कि जो कर को लेकर, जो एक दूसरे के यहाँ आने जाने को लेकर जिस तरह की चीजें, वो बड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर ये हो पाता है तो मुझे लगता है कि शायद दुनिया में एक बड़े सफल प्रयोग के तौर पर इसे देखा जाएगा और एग्रीकल्चर का एक बड़ा रेवोल्यूशन साबित होगा।
हर्षवर्धन जी, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद।